नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा है, स्वर्गदूतों से बड़ा है और यहां तक कि वह मूसा से भी बड़ा है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कोई भी आज आपके वचन को सुने अपने जीवन में आपके आशीषों को प्राप्त कर सके। उनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, पारिवारिक जरूरतें हैं, आप उसे पूरा करें, उन्हें अपनी शांति और आनंद प्रदान करें। आज हम सबसे आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैंने आपसे कहा है कि हम सब इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों का लेखक यहूदी विश्वासियों को सावधान करता है कि उनके मन न भटकें और वे विश्वास से चूक न जाएं, अन्यथा वे प्रभु यीशु द्वारा दिए गए उद्धार के विश्राम का आनंद नहीं ले पाएंगे। वह उन्हें पुराने नियम ही से दिखाता है कि किस प्रकार इसराइल ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करने पाए, अर्थात विश्राम से वे वंचित होकर जंगल में भटकते हुए नाश हो गए। परमेश्वर उनके अविश्वास के कारण उनसे रुष्ट हो गया था। भजन संहिता 95 में लिखा है कि हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं, परंतु इसराइली उससे भटक गए। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ें। लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यहाँ पर आप पूछेंगे, क्या यह विश्वासी के साथ भी सच है? सच हो सकता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर उनके पाप के कारण क्रोधित हुआ था। उनका पाप क्या था? हत्या, चोरी, झूठ। तो उनका पाप क्या था? मेरे मित्रों, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, यही उनका बड़ा पाप था। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, एक दूसरे को समझाते रहो। मेरे प्रियो, हमारे लिए यह आवश्यक है, एक दूसरे को समझाते रहना और प्रोत्साहित करते रहना। लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मुख्य रूप से यह विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है कि पाप के छल में पड़कर वे कठोर न हो जाएं और आशीषों से वंचित हों। परंतु यह अविश्वासियों के लिए भी संभव है। मन में अविश्वास के कारण मनुष्य उद्धार से वंचित हो जाता है। यदि कोई मुझसे कहता है कि उसकी बौद्धिक समस्या उसे मसीह को ग्रहण करने से रोकती है, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता हूं। एक बार किसी दलाल ने बहुत से लोगों को हाथ में बाइबल लिए आराधनालय में जाते हुए देखा। उनके चेहरों पर रुचि के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि सप्ताह के बीच उन्हें आराधनालय में आकर्षित करने वाली बात क्या हो सकती है। यदि आप इस व्यक्ति से भेंट करते तो निश्चय ही कहते कि वह एक बहुत ही अच्छा मनुष्य है। वह भी आराधनालय में आकर बैठ गया। हमारे बाइबल अध्ययन के समाप्त होने पर वह मेरे पास आया और कहने लगा, आपने तो केवल बाइबल की शिक्षा दी है, क्या वे इसी के लिए यहां आते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, क्योंकि गुरुवार की रात हम बाइबल अध्ययन ही करते हैं। वह भी हमारे साप्ताहिक अध्ययनों में आने लगा। शीघ्र ही वह रविवार की आराधना में भी आने लगा और अपने पापों के अंगीकार की दशा में आ गया। मेरे प्रियो, एक दिन वह हमारे कार्यालय में आकर कहने लगा, मैं सोचता था कि मैं विश्वासी हूँ, परंतु अब मुझे समझ में आया कि मैं विश्वासी नहीं, केवल कलीसिया का एक सदस्य हूँ। आपकी बातें सुनकर किसी किसी विषय में मुझे समस्या है, जैसे योना की कहानी। मैं नहीं मानता कि कोई मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रह सकता है। मैंने उससे पूछा, आपसे किसने कहा कि योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात था? मैंने प्रचारकों के मुंह से सुना है, यह उसका जवाब था। क्या बाइबल में नहीं लिखा है? मेरी बाइबल में तो नहीं लिखा है। मैंने बाइबल से पढ़कर उसे योना की कहानी सुनाई और नए नियम से उसके संबंध में यीशु के वचन सुनाए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 40 पद से, योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मैंने उससे कहा, यदि आपको योना के पुनरुत्थान को स्वीकार करने में परेशानी है, तो आपको प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के स्वीकार करने में भी परेशानी होगी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा है, अब मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने उसकी आंखों में घूर कर कहा, आपका कौन सा पाप आपको प्रभु यीशु से दूर रख रहा है? उसका चेहरा यह सुनते ही लाल हो गया और उसने पूछा, आपको किसने मेरे बारे में बताया? आपकी बुद्धि की समस्या वास्तव में आपके मन की समस्या है। आपके जीवन में कोई तो ऐसी बात है जो आपको प्रभु यीशु से दूर रखती है। वह रो पड़ा और उसने मुझे बताया कि वह अपने सेक्रेटरी के घर का किराया दे रहा है और अपना अधिकांश समय वहीं बिताता है। मैंने पूछा कि क्या उसकी पत्नी इस बारे में जानती है? उसने कहा कि उसने यह बात उससे छिपा कर रखी है। मैंने कहा, तो यह आपकी समस्या है, क्या आप प्रभु ईश्वर के लिए अपने सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकते? उसने कहा, क्यों नहीं, मैं उसका किराया देना बंद कर देता हूं, मैं कल ही उससे बात करूंगा। मेरे प्रियो, उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने उसे धमकी दी कि वह सबको बता देगी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसी दिन उसने हमारे कार्यालय में घुटने टेक कर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मेरे प्रियो, मैं बहुत समय से परमेश्वर की सेवा में रहा हूं और मैं जानता हूं कि मनुष्य की समस्या बुद्धि संबंधित नहीं होती है, मुख्य समस्या पाप की होती है और इसी के कारण वे प्रभु यीशु से दूर भागते हैं। मैं आपका ध्यान एक और बाइबल अंश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में, जो मूसा के संबंध में है। लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे जाए, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? पद 11 में, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? वह व्यवस्था की महिमा जिसके कारण मूसा का चेहरा चमकने लगा था और प्रभु यीशु की महिमा में तुलना कर रहा था। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। इसकी व्याख्या प्रायः यूं की जाती है कि मूसा अपने चेहरे के तेज को छिपाना चाहता था, परंतु देखिए यहां स्पष्ट है कि उसने चेहरे पर पर्दा इसलिए डाला था कि इसराइल उस तेज को अंत होता ना देखे। वह महिमा अंत होने वाली थी, परंतु अब यह महिमा प्रभु यीशु की है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। अतः आप देख सकते हैं कि समस्या बुद्धि की नहीं मन की है। मेरे मित्रों, शायद आप प्रभु यीशु के पास आने से रोके जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में पाप है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस पल आपका मन उस पाप को त्याग देगा, उसी पल उसी क्षण आपकी बौद्धिक समस्या का समाधान हो जाएगा। वह आपके हृदय पर पड़ा हुआ पर्दा हटा देगा और पाप मसीह को ग्रहण करके उद्धार पा लेंगे। अब पद 16 पर ध्यान दें, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। अगला पद कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर प्रभु यीशु को वास्तविक रूप प्रदान कर देगा। आज वह असंख्य मनुष्यों में ऐसा कर रहा है। उसके निकट आ जाने से हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यदि आप उसे ग्रहण कर लें तो मेरे प्रियो, आपका भविष्य महान है जब आप उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, पद 13 में हमें स्मरण करवाया गया है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहा करो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हम विश्वासियों को पाप के छल से सावधान रहना है। हम ऐसे स्थिति में आ सकते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन परमेश्वर के लिए संतोषजनक हैं, जबकि हमारा जीवन जंगल के अनुभव में है। उदाहरण के लिए, एक विश्वासी अनिष्ट होकर भी कह सकता है कि उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने विवेक को ही दोषी ठहराना है क्योंकि वह लगातार पाप करने के कारण कठोर हो गया है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो विश्वास के योग्य नहीं हैं, झूठे हैं, परंतु वे घुटने पर ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसी मैंने कभी भी नहीं सुनी। उनका हृदय पाप के कारण कठोर हो गया है, इसलिए उनका विवेक उन्हें दोष नहीं देता है। मेरे मित्रों, इब्रानियों की पत्री का लेखक इसराइल के जंगल के अनुभव का उदाहरण देता है और पहली शताब्दी के यहूदी विश्वासियों पर वही अनुभव प्रासंगिक बनाता है, वरन हमें भी चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा इन सब तथ्यों को हमारे मन में स्थिर करता है। तो मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि इब्रानियों का लेखक यहूदी विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है कि वे अपना मन कठोर ना कर लें, कि जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएं, जैसा उनके पूर्वजों ने उस समय किया था जब परमेश्वर उन्हें जंगल में से लेकर प्रतिज्ञा के देश में ला रहा था। अतः वे हर दिन एक दूसरे को संभालते रहे, ऐसा ना हो कि कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। लिखा है हम मसीह के भागीदार हुए हैं। कृपया विचार करें, हम मसीह में हैं, वह हमारा है। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, पद 6 में भी वह यही विवाद रखता है। हम मसीह के घराने के होने का प्रमाण दिखाते हैं कि हम उसके हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मेरे मित्रों, इस भाग में विश्राम को महत्व दिया गया है, जो मसीह में विश्वास करने के कारण हमारा है। धर्मशास्त्र में विश्राम 5 प्रकार का है। पहला, सृजन कार्य से विश्राम। दूसरा, कनान में प्रवेश का विश्राम। तीसरा, उद्धार का विश्राम। चौथा, समर्पण का विश्राम। और पांचवा, स्वर्ग का विश्राम। यहाँ लेखक परमेश्वर में पूरा विश्वास करने से प्राप्त विश्राम के बारे में कहेगा। यह उद्धार के समय का ही नहीं, दैनिक जीवन का विश्राम है। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। पुराने नियम का यह संदर्भ एक अंतिम भजन संहिता 95 के संदर्भ के साथ समाप्त होता है, जिसे हम पद 7 और 8 में देख चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह पाठकों को स्मरण कराना चाहता है कि ये सत्य पूर्व समय के लिए ही नहीं, आज के लिए भी है, आपके लिए और मेरे लिए भी आज जीवित है। यदि आप मुझसे पूछें कि मेरे जीवन का वह कौन सा पाप है, वह क्या है जिसने सबसे अधिक आपको पीछे हटाया है, तो मैं कहूंगा कि वह मेरा अविश्वास है। मैं अपनी सेवा के वर्षों को देखते हुए यह प्रतीत करता हूं कि मैंने परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं रखा जितना मुझे रखना था। आज सबसे अधिक मैं यह चाहता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखूं। मैं अपना जीवन पूरा का पूरा उसके हाथों में दे देना चाहता हूं, सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देना चाहता हूं। मैं एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था और मैंने पहाड़ से नीचे देखा कि बहुत से नदियां और नाले थे। चित्र में तो बड़ी आकर्षक दिखती है, परंतु यहाँ वे अत्यधिक भयानक दिख रही थी। मैंने परमेश्वर से उसी समय प्रार्थना की, प्रभु मैं पृथ्वी पर तो आप में विश्वास कर पाता हूँ, परंतु जब मैं ट्रेन में यात्रा करता होता हूँ जैसे इस समय, तो मुझे आप में विश्वास रखने की आवश्यकता है। आप मेरी सहायता करें कि मैं अपना पूरा भार आप पर डालकर विश्राम करूं। मैं पहली बार जब ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो शांति से सो पाया था। मैंने अपना जीवन अपने जीवन के कर्ता के हाथ में छोड़ दिया। जब ट्रेन रुकी तो मैं उतर गया। तब मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, इन छोटी छोटी विजयों के लिए तुझे धन्यवाद। आपके लिए तो शायद यह कुछ भी नहीं, परंतु मेरे लिए तो यह बहुत ही बड़ी बात है। मेरे मित्रों इब्रानियों की पत्री का लेखक इसे विश्राम के बारे में कह रहा है, परमेश्वर में पूरा भरोसा करने का विश्राम। यह उद्धार का ही नहीं, मसीही जीवन में दैनिक जीवन की सहायता, बुद्धि और आवश्यकता के बल और विश्राम के बारे में है। इसराइल जंगल में भटक रहा था क्योंकि उनमें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का विश्वास नहीं था। हम देख चुके हैं कि कनान स्वर्ग का प्रतीक नहीं है, वह आत्मिक आशीषों और विजय का प्रतीक है। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, और मेरे विचार में अपने ही अनुभव को व्यक्त करने के लिए वह कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यह किसी उद्धार से रहित मनुष्य की पुकार नहीं है। जी हाँ, यह एक पराजित विश्वासी की पुकार है जिसने उद्धार तो निसंदेह पा लिया था, परंतु उसे मसीह में संतोष प्राप्त नहीं था क्योंकि वह भरोसा नहीं कर पा रहा था। समस्या विश्वास की कमी थी। आज हम में से कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, परंतु उनके जीवन में विश्वास की कमी है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में इस समय विश्वास की कमी है या नहीं, परंतु आप स्वयं को जानते हैं कि आप कहाँ हैं। यदि ऐसी कुछ बात है, अब तक आपने प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं रखा है, विश्वास नहीं किया है, तो आज मौका है कि आप उसके पास आ जाएं, उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें और निश्चय जानें कि वह आपकी सहायता करेंगे। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
नाम यीशु सबसे आला, वो ही है सबसे बाला। नाम यीशु सबसे आला, वो ही है सबसे बाला।
सबसे वो आला, सबसे बाला, सबसे वो आला, सबसे बाला।
नाम यीशु सबसे आला, वो ही है सबसे बाला। नाम सदा रहने वाला, सत्य में झुक जाऊं तेरी हमद गाऊं। चौपान है तू मेरी चट्टान है, तू मेरा चौपान है, तू मेरी चट्टान है,
मेरा चौपान।